नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम में। पिछले पाठ में हमने आदिकाल की सिद्ध और नाथ साहित्य धाराओं के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम आदिकाल के जैन साहित्य और रासो साहित्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन कवियों का समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना गया है। जैन मत का अधिकांश साहित्य गुजरात और राजस्थान में रचा गया। भाषा की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं बल्कि चित्त और आनंद का स्रोत है। इनका मानना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं बल्कि साधना के बल पर स्वयं ईश्वर स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। जैन मत के साहित्य में दो तरह की रचनाएं हैं। जैन मत की साधना, उपदेश, नीति, सदाचार, धार्मिक आडंबरों व कर्मकांडों का खंडन करने वाला मुक्तक काव्य जो दोहों में लिखा गया है। इस श्रेणी में 10वीं शताब्दी के कवि जोइंद और 12वीं शताब्दी के कवि राम सिंह प्रमुख हैं। जैन मत का प्रचार करने के लिए पौराणिक चरित्रों को आधार बनाकर रचे गए काव्य और जैन मत के प्रेरक पुरुषों के चरितों पर रचित काव्य। इस श्रेणी में पौराणिक काव्यधारा में 8वीं शताब्दी के अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम के चरित्र को आधार बनाकर पयुम चरेउ की रचना की। 10वीं शताब्दी में कवि पुष्पदंत ने महापुराण की रचना के साथ नाग कुमार चरित जसहर चरेउ की रचना की है। 11वीं शताब्दी में कनकाभर मुनि ने करकंड चरित की रचना की है। 10वीं शताब्दी में धनपाल द्वारा लोक प्रचलित कथा को आधार बनाकर लिखी गई भविष्यत कथा चरित काव्यों की श्रेणी में आती है। पयुम चरेउ के रचयिता स्वयंभू के बारे में डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि स्वयंभू के काव्य का परिसर बहुत व्यापक है। हिमालय से लेकर समुद्र तक, रणिवासों से लेकर जनपदों तक, राजकीय जल क्रीड़ा से लेकर युद्ध क्षेत्र तक, जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका प्रवेश है। प्रकृति के चित्रकार हैं, भावों के जानकार हैं, चिंतन के आगार हैं। अपभ्रंश भाषा पर ऐसा अचूक अधिकार किसी भी कवि का फिर दिखाई नहीं पड़ा। जैन धारा के कवि और उनकी रचनाएँ इस प्रकार हैं: स्वयंभू, पयुम चरेउ, रिठनेमी चरेउ, पचाम चरेउ, पुष्पदंत, महापुराण, अणाय कुमार चरेउ, जसहर चरेउ, हेमचंद्र सूरी, कुमारपाल चरित, हेमचंद्र शब्दानुशासन, मुनि राम सिंह, पाहुड़ दोहा, जोइंदु, परमात्म प्रकाश, धनपाल, भविष्यत कथा, बाहुबली चरित, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, धर्मसूरी, जम्बूस्वामी रास, स्थूलीभद्र रास, देवसेजमणि, सुलोचना चरेउ, मुनि कनकाभर, करकंड चरेउ, धवल, हरिवंश पुराण, वरदत, वैरसामी चरेउ, हरिभद्र सूरी, रणाभिनाह चरेउ, धाहिल, पयुम श्री चरेउ, लखन, जीवदत्त चरेउ। जैन मत से प्रभावित हिंदी साहित्य विविधता व परिमाण की दृष्टि से समृद्ध साहित्य है। जैन मत की साधना की पद्धतियों के परिचय के साथ इसमें जीवन के विविध पक्षों का उद्घाटन हुआ है। चरित ग्रंथ, रास ग्रंथ, व्याकरण के ग्रंथों की रचना हुई है। पौराणिक चरित्रों को आधार बनाकर भी काव्य की रचना हुई। इन सब का मकसद चाहे जैन धर्म का प्रचार करना ही था, लेकिन इससे हिंदी साहित्य को गति मिली है। जैन साहित्य की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। काव्य रचना का उद्देश्य श्रावकों को तीर्थ, व्रत, उपवास आदि के उपदेश देना है। जैन साधना पद्धति को रचनाओं में स्थान दिया गया है। जैन कवियों ने नश्वर संसार की आलोचना की, अहिंसा, करुणा, दया और साधना पर बल दिया, आत्मा की शुद्धि और त्याग को आचरण में महत्व दिया। जैन साहित्य में रहस्यानुभूति का प्रभाव है। समाज में व्याप्त जाति वर्ण भेद का खंडन किया, प्रबंध और मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं जैन साहित्य में मिलती हैं। जैन रचनाकारों ने व्याकरण ग्रंथों का निर्माण किया, लौकिक अनुभूति और धार्मिक अनुभूति के बीच द्वंद्व का चित्रण किया है, लेकिन धार्मिक आग्रह के कारण वैराग्य का पक्ष प्रबलता से मिलता है। जैन साहित्य के एक दो उदाहरण से इस बात के बारे में कुछ अनुमान जरूर हो जाएगा। श्रृंगार, नीति व धर्म संबंधी दोहे देखिए। पिय संगम कौ निद्दड़ी, पियवहो प्रवक्खो केम, मई विन्नवी विनाशिया, निद न ऐम न तैम्ब। यानी प्रिय के संगम में नींद कहाँ, प्रिय के प्रोक्ष में नींद कहाँ, दोनों प्रकार से नींद नष्ट हुई, नींद न यों न त्यों। नीति परक दोहा देखिए। जो गुण गोवी अपना, पैड़ा करई परस, तसुहऊ कलजुग दुल्लहो, बलि किज्जो स्वर्णस। जो अपना गुण छिपाए, दूसरे का प्रकट करे, इस कलयुग में दुर्लभ गुण पर बलि बलि जाऊं, प्रायव मुनिहवि भंतड़ी, ते मणि अड़ा गणंति, अखई निरामयी परम पई, अज्जवी लऊ न लहंत। यानी प्राय मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है, वे मन का गिनते हैं, अक्षय निरामय परम पद में आज भी लो नहीं लगा पाते। जैन तीर्थांकरों के जीवन चरित तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। अतः जैन साहित्य का सबसे प्रभावशाली रूप रास ग्रंथ बन गए। ध्यान रखने की बात है कि जैन साहित्य के रास में और चारण काव्य के रासों अलग अलग हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। जैन साहित्य के बारे में जानने के बाद अब हम विचार करेंगे आदिकाल की रासों काव्य धारा पर। इस साहित्य धारा में वीरता और श्रृंगारिकता का बाहुल्य है। ये विषय साहित्य के प्रिय व सदाबहार विषय रहे हैं। रासों काव्यों में इनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इस साहित्य पर एक नज़र डाले बिना आदिकाल को पूरी तरह नहीं जान सकते। रासों काव्य से अभिप्राय है चारण भाटों द्वारा रचित अपने आश्रयदाता राजाओं का प्रशस्ति परक काव्य। राजाओं की वीरता और पराक्रम का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, शिकार के दौरान का साहस, उनके प्रेम प्रसंग और विलासिता इनकी मुख्य विषय वस्तु होती है। राजाओं की वीरता का चित्रण होने से इनमें वीर रस का परिपाक होता है। इन वीर गाथाओं को रासों कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों ग्रंथों को आधार बनाकर ही आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था। रासों काव्य धारा आदिकाल में उत्पन्न हुई, लेकिन बाद तक इसमें साहित्य रचना होती रही। इन ग्रंथों के पीछे लगा रासों शब्द कहाँ से आया, हिंदी के इतिहासकारों ने इसकी खोज की। रासों शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के कई मत हैं। राजसूय, रसायन, रासक, रासव, रास, रहस्य, इन शब्दों से इनकी उत्पत्ति के संबंधों में विद्वानों ने तर्क दिए। हम यहाँ इनके विस्तृत विवरण की जरूरत नहीं समझते कि किस विद्वान ने किस शब्द से उत्पत्ति मानी, उसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए और उसे स्वीकार करने या न करने के पीछे क्या कारण थे। यहाँ इतना ही कहना काफ़ी है कि इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक तर्कसंगत है कि रास परंपरा की गीत नृत्य परक रचनाएं आगे चलकर वीर रस के पद्यात्मक इतिवृत्तों में परिणत हो गई। रासों प्रधानतः गान युक्त नृत्य विशेष से क्रमशः विकसित होते होते उपरूपक और फिर उपरूपक से वीर रस के पद्यात्मक प्रबंधों में परिणत हो गया। इस गेय नाट्यों का गीत भाग कालांतर में क्रमशः स्वतंत्र श्रव्य अथवा पाठ्य काव्य हो गया और इनके चरित नायकों के अनुसार इनमें युद्ध वर्णन का समावेश हुआ। प्रमुख रासों ग्रंथ और उनके रचनाकार इस प्रकार हैं। पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, बीसलदेव रासो, नरपति नाल, परमाल रासो, जगनिक, हमीर रासो, सारंगधर, खुमान रासो, दलपति विजय, विजयपाल रासो, नलसिंह भाट, बुद्धि रासो, जलहण, कलयुग रासो, रसिक गोविंद, कायम खां रासो, न्यामत खां जान कवि, राम रासो, समय सुंदर, राणा रासो, दयाराम या दयाल कवि, रतन रासो, कुंभकर्ण, कुमारपाल रासो, देवप्रभ। रासो ग्रंथों की विशेषताओं को इस तरह से चिन्हित किया जा सकता है कि इन रचनाओं में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्धप्रमाणिक मानी जाती हैं। इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। इनमें वीर रस व श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इनमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है। दोहा, त्रोटक, गाथा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। हम यहाँ रासो काव्य धारा की दो तीन महत्वपूर्ण रचनाओं का परिचय दे रहे हैं, जिससे इस काव्य की रचनाओं के मिजाज का अनुमान सहज ही हो जाएगा। चंद्र बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन कथा है। इसके रचयिता चंद बरदाई पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र थे। इसमें पृथ्वीराज के युद्धों का, उसकी वीरता व विवाहों का वर्णन है। इंचनी, प्रथा, संयोगिता और शशिव्रता के साथ पृथ्वीराज के विवाह के वर्णन हैं। इनके रूप सौंदर्य और शारीरिक चेष्टाओं के सूक्ष्म वर्णन हैं। काव्य नायक के युद्ध और विलासिता का प्रभावशाली वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो के चार संस्करण उपलब्ध हैं, बृहत्तम, बृहत, लघु और अति लघु। इनमें 250 से लेकर 10,000 छंदों तक का विस्तार है। इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ग्रंथ में वर्णित घटनाओं और इतिहास के समय में तालमेल नहीं बैठता और कई घटनाएं ऐतिहासिकता से दूर कपोल कल्पित हैं। असल में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस तरह से छाया रहा कि इस ग्रंथ के काव्य सौष्ठ पर चर्चा दबकर रह गई। प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के विवाद पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की टिप्पणी एकदम स्टीक है। उनका कहना है कि इस निरर्थक मंथन से जो दुस्तर घनराशि तैयार हुई है, उसे पार करके साहित्यिक रस तक पहुंचना हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए असंभव सा व्यापार हो गया है। ऐतिहासिक, साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टियों से विचार करके ही पृथ्वीराज रासो का महत्व समझा जा सकता है। साहित्यिक दृष्टि से पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण व उत्कृष्ट रचना है। पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः वीर और श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। युद्धों के सजीव चित्र हैं। प्रभावशाली चरित्र चित्रण इसकी विशेषता है। सामंती युग के जीवन को जानने समझने में इसका बड़ा महत्व है। छंदों की विविधता है। इसके मुख्य छंद कवित्त, दोहा, त्रोटक और गाथा हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा एक समय की नहीं है, मिश्रित भाषा है। भाषा में संस्कृत, पाली, पिंगल, ब्रज, सौरसैनी, डिंगल, अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द मिलते हैं। संप्रेषणीयता की दृष्टि से भाषा खरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में टिप्पणी की है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवितों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वरांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाग्जाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। पृथ्वीराज रासो एक विशद ग्रंथ है। तत्कालीन सामंती समाज का इसमें चित्रण है, जिससे और भाषा के विविध रूप हैं। नरपति नाल रचित बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो विक्रमी संवत 1400 के आसपास की सुप्रसिद्ध रचना है। इसके रचनाकार नरपति नाल हैं। इस रचना में उन्होंने कहीं पर स्वयं को नरपति कहा है और कहीं पर नाल। संभव है कि नरपति उनकी उपाधि रही हो और नाल उनका नाम हो। बीसलदेव रासो में बीसलदेव के जीवन के 12 वर्षों के कालखंड का वर्णन किया गया है। बीसलदेव एक प्रतापी राजा एवं संस्कृत के अच्छे कवि थे। बीसलदेव ने अपना हरकेली विजय नाटक शिलापट्टों पर खुदवाया तथा राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रह नामक नाटक भी लिखा। बीसलदेव रासो मूलतः एक विरह काव्य है। बीसलदेव अजमेर का राजा है जिसका विवाह भोज परमार की बेटी राजमती से होता है। बीसलदेव को सोरटा, टोंक, मुंडोवर आदि कई क्षेत्र दहेज में मिलते हैं। बीसलदेव स्वयं को बड़ा राजा मानने लगता है। इस तरह की अहंकार भरी बातें अपनी पत्नी से करता है। उसकी पत्नी राजमती उड़ीसा के राजा के वैभव के बारे में बताती है। इससे बीसलदेव के अहंकार को ठेस लगती है। वह उड़ीसा चला जाता है। रानी राजमती विरह से बेचैन रहती है और राजा की खबर लेने के लिए अपने राजपुरोहित को उड़ीसा भेज देती है। राजपुरोहित देखता है कि राजा बीसलदेव राज सेवा में लगा हुआ है। पुरोहित उसे रानी के विरह के बारे में बताता है। उड़ीसा का राजा बीसलदेव को भारी मात्रा में धन देकर विदा करता है। 12 साल के बाद राजमती अपने पति से मिलती है। बीसलदेव रासो के 4 खंड हैं। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से बीसलदेव का विवाह होना। खंड 2, बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहां 1 वर्ष रहना। खंड 3, राजमती का विरह वर्णन तथा बीसलदेव रासो का उड़ीसा से लौटना। खंड 4, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसलदेव का वहां जाकर राजपूतों को फिर चित्तौड़ लाना। बीसलदेव मूलतः गेय काव्य है। इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है। विरह की विभिन्न दशाओं और अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। बीसलदेव नायिका प्रधान काव्य है जिसमें स्त्री की सामाजिक स्थिति व उसकी आकांक्षाओं को वर्णित किया गया है। इसमें श्रृंगार रस के चित्रण भी किए गए हैं। बीसलदेव जब उड़ीसा जाना चाहता है तो रानी राजमती उसे रोकने के लिए अनेक प्रयास करती है। उसमें नारी के रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ये चित्रण उसी तरह का है जैसे लोक गीतों में मौजूद होता है। सात सहेलिये सुनो म्हारी बात, कंचौ खोल दिखाया गात, जहाँ दीठा मुनिवर चलई, महाकौ मूरख राव न जानई सार, त्रियाम चरितमयी लख किया, राव नहीं सखी भैंस पिडार। राजमती अपनी सहेलियों से कहती है कि सात सहेलियों मेरी बात सुनो, मैंने अपनी कंचुकी खोलकर अपना बदन दिखाया जिसे देखकर मुनियों का भी दिल डोल जाता है, लेकिन मेरा पति तो मूर्ख है जो इसका महत्व ही नहीं जानता। मैंने सारे त्रियाचरित्र कर लिए हैं लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। राजमती के माध्यम से उस काल की स्त्री की आकांक्षाएं भी उद्घाटित होती हैं। स्त्री और विशेष तौर पर राजघराने की स्त्री पर जो सामाजिक वर्जनाएं हैं उसका जिक्र करते हुए स्वतंत्र जीवन की इच्छा व्यक्त की है। स्त्रीय जन्म काई धियउ महेश, अवर जन्म थारी घणा रे नरेश, रानी न सिरजई रोझड़ी, धणा न सिरजई धौली गाय, बणखंड काली कोयली, हऊँ बजती अम्बा नई चंपा की डाल, भक्ति द्वर्स बिजोरड़ी, इणी दुख झूरह अबला जी बाल। राजमती कहती है कि मुझे स्त्री जन्म क्यों दिया और कोई जन्म क्यों नहीं दिया, मुझे रानी क्यों बनाया, मुझे रोज क्यों नहीं बनाया, गाय क्यों नहीं बनाया, वन में रहने वाली काली कोयल क्यों नहीं बनाया, मैं चंपा की डाल पर बैठती और नीम की निबोली खाती। आजणी काई न सिरजिय करतार, क्षेत्र कमावती स्यों भरतार, पहिरण आछी लोबड़ी, तुंग तुरिय जिम भिड़ती गात्र, साइये लेती सामूही, हंस हंस बूझती प्रीतणी बात। राजमती कहती है कि मुझे किसान क्यों नहीं बनाया, अपने पति के साथ काम करती, मोटा कपड़ा पहनती, मेरा शरीर पहाड़ सा हो जाता, अपने पति से हंस हंस कर प्रेम की बातें करती। जगनिक रचित आलखंड, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ जगनिक रचित आलखंड से हैं। अपने रचना काल से लेकर आज तक यह रचना भारतीयों के हृदय में साहस और त्याग का मंत्र फूंकती रही है। जगनिक कालिंजर के चंदेल राजा परमार्दी देव का भाट था। परमाल के सामंत और सहायक महोबा के आला और उदल को नायक मानकर आलाखंड नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे लोक में आला नाम से प्रसिद्धि मिली। इसे जनता ने अपने गले का हार बनाया। आला का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बांसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में, विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। आला गाने वाले लोग अलहत कहलाते हैं। सन 1865 ईस्वी में फरूखाबाद के कलेक्टर सर चार्ल्स इलियट ने आलाखंड नाम से इसका संग्रह कराया। आलाखंड में तमाम लड़ाइयों का जिक्र है। शुरुआत मांडो की लड़ाई से है। मांडो के राजा करिंगा ने आला उदल के पिता जच्छराज बच्छराज को मरवा के उनकी खोपड़ियां कोल्हू में पिरवा दी। उदल को जब यह बात पता चली, तब उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लिया। उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष थी। युद्ध का वर्णन बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। इस दोहे में, इस पद में आप इसको देख सकते हैं। खटखट खटखट तेगा बाजे, बोले छपक छपक तलवार, चले जुनबी ओ गुजराती, ऊना चले बिलायत क्यार, तेगा चटकें बर्दवान के, कटकट गिरे सुघरुआ जवान, पैदल के संग पैदल भिरे, ओ अस्वारन तय अस्वार, होदा के संग होदा मिल गए, ऊपर पेश कबज की मार, कटकट शीश गिरे धरनी में, उठ उठ रुंड करें तलवार, 8 कोस के तह गिरदा में, धंधा धुंध चले तलवार, पैग पैग पर पैदल गिर गए, उनके दुई दुई पग अस्वार, बिसे बिसे पर हाथी डोरे, छोटे पर्वत की उनहार, कल्ला कटी गए जिन घोड़न के, धरती गिरे भरहरा खाए, कटे भसुंडा जिन हाथिन के, दल में गिरे करोटा खाए। रासो ग्रंथों का अध्ययन ऐतिहासिकता के संदर्भ में किए जाने से इसके साहित्यिक सौष्ठव के सवाल कुछ पीछे छूटे हैं। आखिरकार रासो ग्रंथ साहित्य की रचनाएं हैं, न कि इतिहास की। साहित्य की रचनाओं में इतिहास की घटनाओं और पात्रों को निश्चित तौर पर विषय बनाया जा सकता है। इतिहास और कल्पना के संयोग से भी साहित्य रचना करना निषिद्ध नहीं है। इन रचनाओं के अध्ययन का एक तरीका रूढ़ हो गया है, जिसे तोड़कर ही इनका पाठ किए जाने से इनकी साहित्यिकता सही मायने में उद्घाटित होगी। उदाहरण के तौर पर बीसलदेव रासो की नायिका राजमती स्त्री के संदर्भ में अनेक सवाल खड़े करती है। भारतीय समाज में स्त्री के दोयम स्थान पर प्रश्नचिन्ह लगाती हुई स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की कामना करती है। रासो साहित्य की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के सवालों को छोड़कर साहित्यिक सवालों पर नए संदर्भ में व्याख्या विश्लेषित करने की आवश्यकता है। आज हमने चर्चा की आदिकालीन हिंदी साहित्य की जैन और रासो काव्य धाराओं के बारे में। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।